रात गहराती जा रही थी। आसमान में चांद बादलों के बीच छिप-छिप कर झांक रहा था। बाहर सब कुछ शांत था, मगर रैना के घर के अंदर हलचल थम नहीं रही थी। रैना अपने कमरे में किताब लिए लेटी थी, पर उसकी आंखें हर दो मिनट में भीग जाती। दूसरी ओर उसके पिताजी राजेश जी अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। उनकी आंखें बार बार खुल जातीं, फिर बंद होतीं, पर नींद कहीं आसपास भी नहीं थी। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, मेरी बेटी की जिंदगी कब सुकून पाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और छत की ओर देखते हुए खुद से बुदबुदाए, हे भगवान, क्यों बार बार मेरी बेटी का दिल तोड़ते हो? किस टन का पाप है जो उसे बार बार ऐसी तकलीफ मिलती है? पहले शादी, फिर तलाक, और अब ये खबर कि वही लड़का किसी और की जिंदगी का साथी बनने जा रहा है। मेरी बच्ची कितनी बार टूटेगी? उनकी आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने हाथ से आंसू पोंछने की कोशिश की। मैंने तो हमेशा यही दुआ की थी कि मेरी बेटी का घर खुशियों से भरा हो, पर किस्मत ने जैसे कसम खा ली है उसे सिर्फ आंसू देने की। क्या कभी उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट लौटेगी, या वो सारी उम्र ऐसे ही रोती रहेगी? ये कहते कहते उनके सीने में अचानक एक तेज दर्द उठा। उन्होंने हाथ तुरंत सीने पर रख लिया। सांसें भारी हो गईं। आह, ये क्या हो रहा है? वो करवट बदलने की कोशिश करने लगे, मगर दर्द और तेज हो गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने पास रखे पानी के गिलास की ओर हाथ बढ़ाया, पर हाथ कांपने लगे और गिलास गिरकर जमीन पर टूट गया। गिरते पानी और कांच की आवाज़ सुनकर रैना के कान खड़े हो गए। वो दौड़कर अपने पिताजी के कमरे में पहुंची। पापा, पापा, ये क्या हो रहा है आपको? वो उनके पास बैठ गई और उनका कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। बेटा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। रैना की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत उनके तकिए को ठीक किया और उन्हें सहारा देकर बैठाया। पापा, घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़ोन उठाने से पहले ही उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू उसकी उंगलियों तक गिर रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी, मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। दिमाग इतना अस्त व्यस्त था कि उसे समझ ही नहीं आया कि किसे कॉल करना चाहिए। उसने बिना देखे घबराहट में एक नंबर डायल कर दिया। स्क्रीन पर नाम तो दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की धुंध इतनी थी कि पढ़ नहीं पाई। कॉल जैसे ही कनेक्ट हुई, सामने से आवाज़ आई। हेलो, कौन? रैना रोते हुए बोली। प्लीज़, जल्दी आ जाइए, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अकेले क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, जल्दी आओ प्लीज़। सामने कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर अचानक वही आवाज़ कांपती हुई बोली, रैना, ये तुम हो? रैना जैसे पत्थर बन गई, उसका रोना थम गया। उसने आंखें फैलाकर फ़ोन को देखा। अखिल? हाँ, वो अखिल ही था, वही जिससे उसने कभी कसम खाई थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कभी उसे जगह नहीं देगी, वही जिससे दूरी बनाकर रखी थी, वही जिसे वो भूलना चाहती थी। अखिल की आवाज़ भी उतनी ही घबराई हुई थी। हाँ रैना, मैं ही हूँ, तुम ठीक हो? अंकल को क्या हुआ? तुमने अभी कहा कि उनकी तबीयत खराब है। मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। रैना की सांसें अटक गईं, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया। उसने तो फ़ोन अपनी सहेली सीमा को लगाना चाहा था, पर किस्मत ने नंबर बदल दिया और कॉल अखिल तक पहुँच गई। उसकी आंखों में फिर आंसू उमड़ आए। होंठ कांपते हुए बोले, मैंने तो सीमा को फ़ोन लगाया था, पर... अखिल ने बीच में ही रोक दिया। अब ये सब कहने का समय नहीं है रैना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अंकल की हालत कैसी है, क्या एम्बुलेंस बुलानी है? रैना हड़बड़ाकर बोली, हाँ हाँ, शायद एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, पापा का दर्द बहुत बढ़ रहा है। अखिल ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तुम अकेली मत घबराओ, मैं अभी निकलता हूँ, तुम बस अंकल के पास रहो, सब ठीक हो जाएगा। रैना फ़ोन पकड़े हुए पत्थर सी खड़ी रह गई। उसके कानों में आखिरी शब्द गूंज रहे थे, मैं अभी निकलता हूँ। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि ये राहत है या फिर नई उलझन, जहाँ किस्मत ने एक बार फिर रैना और अखिल को आमने सामने लाने का रास्ता बना दिया था।